स्वभूतकाम् ज्ञातारं विश्वसत्त्वात्। आचार्य कुंद कुंद भगवान की, दस लक्षण महापर्व की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज आज पर्युषण का तीसरा दिन है। तीसरा अध्याय तत्वार सूत्र का अपन समझने की कोशिश करेंगे। सात तत्वों का प्ररूपण तत्वार सूत्र में क्रमशः किया गया है। जीव तत्व के प्ररूपण के लिए पहले चार अधिकार हैं, तीसरे अधिकार में भी जीव तत्व का ही वर्णन है, पर वो जीव कहां रहता है इस बात को यहां बताने की कोशिश की जाए। जैन दर्शन के अनुसार पूरे लोक को तीन भागों में विभाजित किया है, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक और अधोलोक। अधोलोक नारकी जीवों का निवास स्थान है, मध्यलोक मनुष्य और तिरंच जीवों के निवास के लिए स्थान देता है, और ऊर्ध्वलोक देवों के लिए है। इस तरह चारों गतियों के जीव तीन लोक में निवास करते हैं। वर्तमान में जितना विदित विश्व है, पृथ्वी है और सूर्य चंद्रमा है, उन सब की जानकारी विज्ञान के पास है, लेकिन ऊर्ध्व और अधोलोक या कि समूचे मध्यलोक के बारे में भी विज्ञान के यंत्र जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। दिव्य ज्ञान के द्वारा ही इस लोक की संरचना को समझा जा सकता है। इसलिए तत्वार सूत्र के तीसरे अध्याय में अपने दिव्य ज्ञान से आचार्य भगवंत ने जो लिखा है उसे हम श्रद्धा से स्वीकार करेंगे। हम मिलान करने की कोशिश करेंगे तो हमें कम से कम तीन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कंपेरेटिव स्टडी होती है, हो सकता है कि आज के ज्योग्राफी और कॉस्मोलॉजी के लोग इससे मिलान करने की कोशिश करें, तब तीन चीजें कंपेरेटिव स्टडी के लिए जरूरी है। सबसे पहली चीज कि समानताएं कितनी हैं, विषमताएं कौन कौन सी हैं, संभावनाएं अनंत हैं। तीन चीजों पर जरूर से विचार करना चाहिए। कहां हम वर्तमान में अपने पूर्व से सामने रखते हैं, कितनी चीजों में विषमताएं मालूम पड़ती हैं, विषमताएं होती नहीं हैं पर मालूम पड़ती हैं, अज्ञानता विषमताओं को जन्म देती है। इसलिए हम जहां भी विषमता मालूम पड़े वहां अपनी ही अज्ञानता मानेंगे, हम उसमें कहीं कोई दोष या खामी निकालने की कोशिश नहीं करेंगे। और तीसरी चीज, संभावनाएं तो अनंत है। हर चीज में जितना जानते जाइएगा उतना और नया नया जानने के लिए मालूम पड़ने लगता है। कह रहे हमको तो ये भी नहीं मालूम था, थोड़ा सा जानने के बाद मालूम पड़ता है, कह रहे हमारा ज्ञान ज्यादा है, हमारा ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा। इसलिए इस अध्याय को अगर हम भौगोलिक स्थिति से देखना चाहेंगे तो भौगोलिक स्थिति से तो हमारी अप्रोच के बाहर है। सुमेरु पर्वत की भौगोलिक स्थिति क्या है और जम्बू द्वीप की भौगोलिक स्थिति इतनी विशाल है, विदेश क्षेत्र कहां है और स्वर्ग और नरक दिखाई नहीं पड़ते हैं, इन सब के बारे में हम एक परिकल्पना या कि कल्पना तो कर ही सकते हैं, पर अगर देखा जाए तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है, क्योंकि पूरा जैन दर्शन हमें अंततः सारी जानकारी देकर अपने आत्मा की तरफ ही ले जाता है। अगर इस अध्याय का कोई आध्यात्मिक अर्थ है तो वो इतना ही है कि ये सारी रचना हमारी आध्यात्मिक उन्नति और अवनति, हमारे ही उत्थान और पतन का एक स्वरूप है। ये तीन लोक की संरचना हमें इस बात की तरफ इशारा करती है कि छह द्रव्यों से मिलकर बना हुआ लोक हमेशा से है, ना इसे किसी ने बनाया है, ना कोई इसे मिटाता है, ना इसे किसी ने धारण किया है। जैसी कि कई विभिन्न मान्यताएं हैं कि किसी ने बनाया है, इसे कोई बनाने वाला है, कोई इसका संहार करता है और कोई इसकी रक्षा करता है, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि, ये तीनों लोक छह द्रव्यों से मिलकर के बने हैं। वेयर देयर इज एवरीथिंग इज एग्जिस्ट इज कॉल्ड यूनिवर्स। ये साइंस की परिभाषा भी है कि जहां जितनी चीजें अस्तित्व को रखती हैं वे उपस्थित हों वो सब यूनिवर्स है। हम भी यही कहते हैं कि जहां सिक्स सब्सटेंसेस आर देयर इट्स कॉल्ड यूनिवर्स। जहां छह द्रव पाए गए वो सब यूनिवर्स है। और सबसे मजा ये है कि बिल्कुल साइंस की भाषा में कि लोक है तो कोई एक अलोक भी है, एंटी यूनिवर्स भी होना चाहिए। हम भी कहते हैं कि हाँ, जहां सिर्फ आकाश है वो अलोक आकाश, वो अलोक है। लोक और अलोक, जैसे कि प्रोटॉन एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन, आज की भाषा में अगर हम देखें तो इस तरह भी हम अपने पूरे इस लोक और अलोक की संरचना को आसानी से समझ सकते हैं। तीन भागों में विभाजित थोड़ी सी कल्पना करें कि 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादित हैं, भरमत हैं विज्ञान। सारा अध्यात्म और सारी भौगोलिक संरचना इन दो लाइनों में आ गई। 14 राज उतंग नव, नीचे से लेकर ऊपर तक सारा लोक 14 राजू ऊंचा है, 7 राजू चौड़ा है, 7 राजू ही गहरा है। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण और वर्टिकल टॉप टू बॉटम, ये 14 राजू और 7 राजू। ये बात अलग है कि जब संरचना बनाएंगे तो नीचे 7 राजू है, मध्य लोक में जाकर के 1 राजू है, बीच में फिर 5 राजू, 3.5 राजू जाने के बाद, और फिर ऊपर जाकर के 3.5 राजू, और ऊपर जाके फिर 1 राजू, वहां सिद्ध शिला है। एक आप इमेज करें, पुरुष के आकार का है, जैसे कि कोई व्यक्ति अपने दोनों पैर फैलाए और अपने हाथ इस तरह कंधे पर रखे तो जो संरचना बनती है वही संरचना लोक की है। ये प्रतीकात्मक है। अगर हम देखें तो पूरी की पूरी सृष्टि, पूरा का पूरा लोक हमारे भीतर स्वयं है। हम ही उस पुरुष के आकार के जो हम हैं, उसी आकार का लोक है। ये हमें इशारा कर रहा है कि उस लोक की तो छोड़ो, वो जो हमारे भीतर हमने अपने अंदर संरचना कर रखी है। बताइएगा कि क्या पूरे लोक में हम इस तरह संरचना नहीं कर सकते हैं? नाभि, नाभि हमारा मध्य लोक है, नाभि के नीचे अधोलोक है, नाभि के ऊपर ऊर्ध्वलोक है। और जब ब्रह्मरंध्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही तो सिद्धत्व की उपलब्धि की प्राप्ति का उपाय है। तब देखिएगा वो सबसे टॉप पर जाकर के अर्धचंद्राकार अगर देखें तो सिद्धत्व के लिए भी जगह हमारे पास ही है। पूरा का पूरा जीवन हमारा लोक की संरचना को, और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर इस लोक में हमने संरचना को जान लिया तो हमें अपनी एग्जिस्टेंस मालूम पड़ जाएगी। और इतने ही नहीं, इस संरचना के साथ साथ हमें यह भी मालूम पड़ जाएगा कि इसमें मैं भ्रमण क्यों कर रहा हूं। 14 राज उतंग नव लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादित हैं, भ्रमत हैं मैं, वे बिना ज्ञान के इसमें भ्रमण करते रहते हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं ज्ञानवान जो कि इस लोक की संरचना को जान करके और लोक से पार हो जाते हैं। वास्तव में इस संरचना को जानने का उद्देश्य इतना ही है। हम जानेंगे कि किस तरह आचार्यों ने हमें इसके बारे में जानकारी दी है। सबसे पहले 6-7 श्लोकों में अधोलोक की संरचना है, फिर उसके बाद मध्य लोक के बारे में जिसमें हम बैठे हुए हैं, हम जानेंगे कि हम कहां बैठे हैं, और फिर ऊर्ध्वलोक के बारे में भी वर्णन है। लेकिन 4th अध्याय में ऊर्ध्वलोक का विशेष रूप से वर्णन आएगा। उसको आज की भाषा में कॉस्मोलॉजी कह सकते हैं, इसको आज की भाषा में ज्योग्राफी कह सकते हैं। जो विदित है वो बहुत थोड़ी सी है, विज्ञान की सीमाएं हैं भैया, उनके एपेटस की सीमाएं हैं, ज्ञान तो बहुत असीम है। इसलिए जो कुछ भी विज्ञान कह देता है वो कोई एकदम 100% सही हो ऐसा नहीं है। अपन लोग आज के बच्चों को भी इस चीज से चमत्कृत नहीं होना चाहिए। बहुत जल्दी चमत्कृत हो जाते हैं थोड़ी सी चीज पढ़ करके। करे जैन धर्म में तो सब बड़ी आउट ऑफ डेट बातें लिखी हुई हैं। हमारे लेटेस्ट इतनी इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, इतनी आविष्कार हो रहे हैं, वो ज्यादा परफेक्ट हैं। नहीं भैया, विज्ञान का कितना सा भरोसा है। विज्ञान अपनी सूचनाएं देता है, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनको देता है, फिर बाद में उनको ही रद्द कर देता है। अपने ही द्वारा दिए गए निर्णय को बाद में कह देता है कि नहीं, एक समय था विज्ञान कहता था कि परमाणु विभाजित नहीं होता, और आज विज्ञान कहता है कि हमने कर लिया है, परमाणु विभाजित कर लिया, और हमारी परमाणु की परिभाषा आज भी ज्यों की तरह है, द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम, द अल्टीमेट पार्टिकल, अनडिवाइजेबल पार्टिकल, जिसको और अधिक विभाजित ना किया जाए, ऐसा अंतिम कण वो परमाणु है, वो आपको कोई मिले ही नहीं। हमने विज्ञान बदलता रहता है, इसलिए और जो चीजें विज्ञान नहीं पकड़ पाया वे है ही नहीं, ऐसे धोखे में ही रहना। 14वीं शताब्दी में जब तक कोलंबस ने अमेरिका नहीं खोजा था, तो क्या उस समय अमेरिका नहीं था क्या? उसके पहले भी था, हमको मालूम नहीं था, हमारा आना जाना नहीं था, पर था तो। इसी तरह आज सुमेरु भी है, आज विदेश क्षेत्र भी है, पूरी असंख्यात द्वीप समूह की मध्य लोक की रचना भी है, ऊर्ध और अधो लोक भी है। सवाल श्रद्धा की आंख से देखने का है, सवाल ज्ञान की आंख से देखने का है। छोटा सा ज्ञान कितना जान पाएगा? अगर श्रद्धा है तो वो ज्ञान हमारे लिए सब कुछ करवा देगा उस श्रद्धा के माध्यम से। ऐसा विचार करके बहुत श्रद्धा से इस अध्याय को, क्योंकि ये अध्याय बहुत डेलिकेट है, इस अध्याय को सुनते सुनते लगने लगता है अरे बड़ी आउट ऑफ डेट चीजें हैं, सब मिलती कहां है, ऐसा मन में विचार भी नहीं लाना। ये सब चीजें हैं, देखो तो हमारा कितना थोड़ा सा ज्ञान है कि हम इन सब चीजों को ठीक ठीक अपनी आंख से देख नहीं पाते हैं। बस इतना ही विचार करना, हमारे ऊपर आचार्य भगवंतों का उपकार है ये मान करके हम इस सूत्र जी की व्याख्या, तीसरे अध्याय की व्याख्या, इसी तरह चौथे और पांचवें अध्याय में भी ना समझ में आने वाली बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन हमें उन सबको श्रद्धा के द्वारा स्वीकार करना है। अधोलोक का वर्णन बात स्पष्ट है, जो कि नीचे है, कैसा है? रत्न शर्करा वालुका पंक धूम तमो महातम प्रभा भूमियो घनाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ता धोधा। सात नीचे नीचे भूमिया हैं जिनमें की नार की जीव रहते हैं, और ऐसी नहीं है ये सात भूमिया जैसे कि अपने यहां पर ये तल्ले बने रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, इस तरह नहीं है। इनके बीच में आकाश भी है, इनके बीच में तीन बात वलय हैं, विभिन्न प्रकार के वायुमंडल से ये घिरे हुए हैं और नीचे नीचे हैं। इनकी जैसी आभा है वैसा इनका नाम दे दिया है, रत्न के समान आभा तो रत्न प्रभा, शर्करा के समान आभा तो शर्करा प्रभा, वालू के समान आभा तो वालू का प्रभा, पंख अर्थात कीचड़ के समान जिसकी आभा है पंख प्रभा, धूम के समान आभा वाली पृथ्वी का नाम धूम प्रभा, तम अर्थात अंधेरे के समान आभा वाली, अंधेरे की भी आभा होती है, आभा वाली पृथ्वी का नाम तम प्रभा और महातम प्रभा। इस तरह ये क्रम क्रम से नीचे नीचे सात पृथ्वी, अधो अधा लिखा हुआ है, ये नीचे नीचे हैं और तीन बात वलय और आकाश पर आधारित हैं, हवा में टिकी हुई हैं, जैसे कि आज की संरचना कहते हैं कि पृथ्वी है और उसके चारों तरफ वायुमंडल है। और देखो इतना साइंटिफिक है, हमारे आचार्य भगवंतों ने तीन प्रकार की वायु भी बताई है, घनाम्बुवात, सघन वायु है, फिर वायु जिसमें मायस्तर है, और फिर तनु विरल वायु है, ऐसे तीन ऑर्बिट हैं, तीन वायुमंडल हैं, और वो उसके बाद आकाश है। तो पूरी पहली जो पृथ्वी है नारकी जीवों के लिए रहने की, अपन उसको नरक कह देते हैं, अपन सामान्य रूप से वास्तव में तो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में फिर नरक है, उसमें बिल है, पर सामान्य रूप से कहने में यह आता कि सात नरक हैं, नहीं सात भूमिया हैं नरक की, और फिर उसमें नरक के लिए स्थान विल अलग हैं। तो जो इस तरह से भूमिया हैं वो एक एक भूमि के बाद में तीन बात वलय हैं, तीन प्रकार का वायुमंडल है, सघन भी है विरल भी है, और दोनों के बीच वायु और पानी से मिश्रित वायुमंडल भी है इस तरह, और फिर आकाश, और उसके बाद दूसरी पृथ्वी, इस तरह से सातों पृथ्वियां नीचे नीचे हैं। इनके रूढ़ि के नाम भी अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं, घम्मा वंशा मेघा अंजना अरित्रा मघवी और माघवी, ये इनके क्रमशः सात नाम रूढ़ हैं, इनको भी हमें जानना चाहिए। और ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा का पूरा छह राजू में सात पृथ्वियां हैं, छह राजू, राजू बहुत बड़ा है, उसको सिर्फ इमेज करिएगा आप, असंख्यात द्वीप समूह जितने में समा जाएं वो एक राजू है इस तरह। और किसी ने राजू के बारे में निकालने की कोशिश की है और उसका माप भी दिया है पर वो बनता नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, न्यूयॉर्क में रहे हैं प्रोफेसर जी आर जैन, अब तो नहीं है, उन्होंने कोशिश की थी एक राजू का कैलकुलेशन निकालने की, तो 1 raju = 1.45 × 10⁻¹⁸ meals ऐसा करके उन्होंने निकाला था, 10^18 घात चढ़ाओ और 1.45 इतना कैलकुलेशन किया था, पर ये भी बनता नहीं, ये तो असंख्यात मील जो है फैला हुआ, असंख्यात द्वीप समूह है, तो असंख्यात मील तक फैला हुआ बहुत बड़ा राजू है। ऐसे 6 राजू में नीचे से पृथ्वियां हैं, 7 पृथ्वियां और 1 राजू में 8वीं पृथ्वी है जिसको कि कलकला पृथ्वी भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ निगोदिया जीव रहते हैं। वैसे तो तीनों लोकों में सिद्ध शिला तक निगोदिया जीवों की उपस्थिति पाई जाती है, पर जहां सिर्फ निगोदिया ही निगोदिया रहते हैं ऐसी 1 राजू की पृथ्वी वो इन 7 पृथ्वियों के नीचे है। इस तरह अधोलोक के बारे में अपन ने भौगोलिक रूप से जान लिया कि क्या है। अब इन 7ों में कितने कितने नरक हैं ये संख्या दूसरे सूत्र में आती है, तासुत्रिंशत् पंचविंशति पंच दश दश त्रिपंचो नैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथा क्रमम्। क्रम क्रम से नीचे की भूमियों में पहले में 30 लाख दिलों की संख्या कम हो जाएगी, पीड़ा अधिक बढ़ जाएगी, 30 लाख पहले में, दूसरे में 25 लाख, तीसरे में 15 लाख, चौथे में 10 लाख और पांचवे में 3 लाख और छठे में 5 + 1 लाख और सातवें में सिर्फ 5 नरक हैं जिनमें नार की जीव असंख्यात की संख्या में रहते हैं, ये उनके नरकों के दिलों की संख्या है। फिर वहां नरक में नार की जीव किस तरह का जीवन जीते हैं ये बताया जाए। जब जब भी किसी गति का वर्णन किया जाए और उसके दुख बताए जाएं, जैसे छेदाला में 4 गतियों के दुख बताए गए हैं, उसका उद्देश्य क्या है हमें यह समझना है। वे सब हम भोग चुके हैं, क्या हम उन्हीं को भोगने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ इसका ध्यान रखना है। 2 ही बातें, 4ों गतियों में मैं कष्ट भोग चुका हूं, अब मेरी तैयारी किस तरफ की है, क्या मैं पुनः अपने हाथ से अपने लिए कष्ट में डालना चाहूंगा, तो कोई बात नहीं, ज्ञान प्राप्त करके हमें इतना ही सावधानी की आवश्यकता है। जब भी कष्ट, कई लोग कहते हैं कि अरे बेकार में नरक के कष्ट बताते हैं, हमें डरवाना चाहते हैं, नहीं भाई, हम ये सब भोग चुके हैं। जानाति त्वं मम भव भवे यच्च यादृक्च दुःखं जातं यस्य स्मरणमपि मे शस्त्रवन् निस्पिनस्ति त्वं सर्वेशः सकृपीति च त्वामुपेतोऽस्मि भक्त्या यत् कर्तव्यं तदी विषये देव एव प्रमाणम्। भगवान आप सब जानते हैं भाव भाव में मैंने किस प्रकार की पीड़ा सही है, तो जब मुझे जब जब भी उस पीड़ा की याद आती है तो ऐसा लगता जैसे किसी ने मेरे छाती में बर्छी चुभा दी हो, इतनी पीड़ा होती है। अपन को अपनी ही भोगी गई पीड़ा याद करने पर कोई कष्ट नहीं होता, इसीलिए तो हम उस पीड़ा से बचने का कोई उपाय नहीं करते हैं, बल्कि उस पीड़ा का और उपाय अपने हाथ से कर लेते हैं। भगवान की भक्ति करते हुए बादीराज स्वामी लिखते हैं कि भगवान आपके पास आ गया हूं तो हमने सुना है कि आप कृपालु हैं, दयालु हैं, सो अब इस बारे में आपको जो करना हो सो करो। जब भी दुखों का वर्णन आए तो हमारे मन में यही आना चाहिए। देखिए तीसरे श्लोक में क्या सूत्र में क्या लिखा, नारका नित्या शुभतर लेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नार की जीव वहां पर नित्य ही, नित्य का मतलब यहां निरंतर कंटिन्यू, एक क्षण के लिए भी उनको इस तरह की पीड़ा से निजात नहीं मिलती है, निरंतर पीड़ा से दिन गुजरते हैं। यहां भी जो लोग निरंतर पीड़ा भोगते हैं वे भी अपना नरक यहीं के यहीं देख लेते हैं, मारी थारी करना ही नरक बनाना है और शांति से रहना घर को स्वर्ग बनाना है। अगर हम इससे ये प्रेरणा ले लें तो नरक तो जब जाएंगे या नहीं जाएं वो अलग चीज है, लेकिन अपने जीवन को तो नरक ना बनाएं, इतना तो कर ही सकते हैं। अशुभतर लेश्या, तिरंचों से भी ज्यादा गई बीती लेश्या कह रहे हैं। अशुभतर कहने का मतलब कॉम्पेरिटिव है, कॉम्पेरिटिव डिग्री होती ना, शुभ, शुभतर, शुभतम, इस तरह से गुड बेटर बेस्ट। इसी तरह यह है अशुभतर, ना तिरंचों से भी ज्यादा अशुभ यहां पर लेशा होती। लेशा मतलब भाव दशा, कृष्ण नील कापोत, ये तीनों लेशा यहां पर होती हैं। कापोत लेशा दूसरे रथ पर चलती है, फिर नील आ जाती है, और फिर उसके बाद तो आखिरी में जाकर के सात में नरक तक महा परम कृष्ण लेशा तक पहुंच जाते हैं। अशुभ अशुभ ही इनके पर लेशाएं भाव दशा होती चली जाती है। और परिणाम, परिणाम का अर्थ यहां पर बहुत स्पष्ट दिया है कि पुद्गलों का स्पर्श रूप गंध इत्यादि जो वहां पर हैं, उन वो सब बहुत अधिक अशुभतर होता है। जैसे अपन कहते हैं ना कि वहां छूते हुए, नरक की भूमि को छूते हुए भी बहुत कष्ट होता है, वहां की हर एक चीज जो है वो पीड़ादायक होती है। परिणाम से अर्थ यही है, सातों नरकों में जो जो चीजें वहां रूप रस गंध इत्यादि हैं वो और पीड़ा देने वाले हैं। और आकृति कहते हैं शरीर, शरीर की आकृति जिसको देह लिखा है, शरीर की आकृति भी जो है बहुत बेडौल होती है, सुंदर नहीं होती, प्लेजेंट नहीं होती, मोर अनफॉर्चुनेट कहना चाहिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीते हैं वहां पर, बस इतना ही कहा जा सकता है। हम सब जो है उस दुर्भाग्य से निकल करके यहां आए हैं ये मानना पड़ेगा। बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि अपने दुर्भाग्य के बारे में भी सोचने का अवसर हमको मिला है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और विक्रिया, विक्रिया मतलब विभिन्न रूप बनाने की जो क्षमता है वो भी अशुभतर ही होती है। कहते हैं कि भाव बनाते हैं कि मैं बहुत अच्छा कुछ करूं, लेकिन हो जाता है उल्टा ही। सामने से अवधि ज्ञान के माध्यम से जानते हैं कि ये जो जीव आ रहा है वो तो मेरी मां का जीव है, तो मैं इससे अभी जाकर के आलिंगन करूंगा, प्रेम करूंगा, इसके पैर छूंगा, और निकट आते ही साथ, और उसे मन बदलता है, सोचता अरे ये वही है जो कि मैं छोटा सा था तो हाथ में काला कुछ लगा लगा करके मेरी आंख में डाल करके फोड़ना चाहता था मैं, अभी देखता हूं। ऐसा उल्टा विचार करके और फिर मारी थारी, फिर मारपीट में लग जाता है, एक क्षण को भी वहां पर इससे बच नहीं पाता है। इसलिए अशुभतर ही विक्रिया होती है। दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाले रूप धारण करते हैं नार की जीव, प्रथक विक्रिया तो नहीं कर पाते हैं, अपने शरीर को ही उस रूप में बना लेते हैं, पेड़ के रूप में बना लेते हैं ताकि और नार की जीव सोचें कि पेड़ है, छाया मिलेगी, उसके नीचे आके बैठते हैं, तो अपने शरीर को तो पेड़ बनाया था तो उसमें से पत्ते जो है गिरा देते हैं, पत्ते ऐसे कि तलवार के समान, तो छार छार हो जाए, मर सकते नहीं है, पारे की तरह शरीर बिखर जाता है और क्षण भर के अंदर पुनः मिल करके फिर नार की जीव फिर लड़ाई के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसी स्थिति है, अगर अपन थोड़ा विचार करें तो ये वर्तमान में भी सब देखने के लिए मिलता है, यहीं पर और दूर नहीं जाना है, यहां भी कई बार देखने में आ जाता है नरक, तो उससे कंपेयर करना चाहिए। भूख प्यास शीत और उष्ण की वेदना, उसके बाद कहते हैं कि वो, मैंने वेदना के पहले विक्रिया बता दिया, खैर वेदना जो है भूख प्यास की वेदना और शीत उष्ण की वेदना वो भी निरंतर बढ़ती चली जाती है। पहली चार भूमियों में तो बढ़ती हुई उष्णता है और उसके बाद लगातार घटती हुई ठंड का संतराश वहां पर जीवों को भोगना पड़ता है। क्षेत्र जन्य दुख तो है ही, परस्पर उत्पन्न होने वाला दुख भी वहां पर है, और इतना ही नहीं अंबावरीश जाति के देव भी वहां पर कष्ट पहुंचाते हैं। परस्परो दीर्घ दुखा, और तो सारे कष्ट वहां जो क्षेत्रगत थे, मानसिक थे, शारीरिक थे, वो तो सब भोगना ही पड़ते हैं। परस्पर एक दूसरे के द्वारा लड़वाए जाने पर भी बहुत अधिक पीड़ा होती है, और इतना ही नहीं वहां पर अंबावरीश जाति के जो असुर कुमार देव हैं वो भी तीसरी पृथ्वी तक पर जाकर संक्लिष्टा सरो दीर्घ दुखास चपात चतुर्थ्या, चौथी पृथ्वी के पहले पहले अर्थात तीसरी पृथ्वी तक जाकर के बहुत संक्लेश परिणाम से युक्त असुर जाति के देव वहां पर नारकी जीवों को अपने अवधि ज्ञान के द्वारा और बहुत जीवन की बातें बता बता करके आपस में लड़वा देते हैं। जैसे यहीं पर संसार में भी दो लोग एक दूसरे के बारे में ना भी जानते हों, तीसरा दोनों को एक दूसरे की चुगली करके आपस में भिड़वा देता है, ऐसा ही तो वहां है। मुझे तो मनुष्य से ज्यादा खतरनाक नारकी भी नहीं मालूम पड़ता, न तिरंज ज्यादा खतरनाक है और नारकी भी उतना नहीं है, जितना मनुष्य सशक्त है, खतरनाक भी है लेकिन उसके अंदर और दूसरी क्वालिटी भी है, अगर उनको डेवलप करें तो हमें इससे यही शिक्षा लेनी चाहिए। और इनकी स्थिति क्या है, कितने वर्षों तक, देखो दुख तो एक दिन का भी वर्षों जैसा मालूम पड़ता है, तो फिर वर्षों वर्षों का दुख कितना होता होगा, इमेज करें, लाखों करोड़ों वर्ष तक जो है सागरों पर्यंत कष्ट भोगने की स्थिति, इसलिए आयु भी इनकी बहुत बहुत अधिक होती है। 23 वेग 3 सप्त 10 सप्त 10 जागुण 17 63 सागरूप मां सत्वा नाम परा स्थिति, उत्कृष्ट इनकी आयु बहुत अधिक होती है। कितनी होती है तो क्रम से उत्कृष्ट स्थिति 1 सागर 3 सागर 7 सागर 10 सागर 17 सागर 22 और 33 सागर, साथ में 33 सागर, 1 सागर से लेके 33। सागर क्या है, बहुत बड़ी संख्या है भैया, उसको तो इमेज कर सकते हैं आप, मैं तो मोटा मोटा हिसाब जानता हूं, वो पल बनाओ और फिर सागर बनाओ, उससे बेहतर है कि अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि जितनी समुद्र में बूंदे हैं उतने वर्ष। ज्यादा झगड़े मत पड़, सागर इमेजनरी है, इमेजिनेशन करिएगा कि समुद्र कितना बड़ा और उसमें जितनी बूंदे उतने वर्ष, इतना अधिक समय जो है वहां पर व्यतीत करना पड़ता है दुख के द्वारा। ये हो गया नरक के बारे में या कि अधोलोक के बारे में, इतने ही श्लोकों में वर्णन, 6 श्लोकों में वर्णन अधोलोक का है। अब हम जिस मध्यलोक में बैठे हैं उसका वर्णन शुरू होता है। जम्बूद्वीप लग्नोदाद्य शुभ नामानो द्वीप समुद्र, जम्बूद्वीप और लवण समुद्र नाम वाले असंख्यात द्वीप और समुद्र जहां पर है वो मध्यलोक है, या कि इस मध्यलोक में जम्बूद्वीप या तो द्वीपों का नाम, पहला द्वीप है जम्बूद्वीप और लवण समुद्र ये पहला समुद्र है, ऐसे शुभ नाम वाले द्वीप और समुद्र, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन जिसको आज की भाषा में कहते हैं, और कोई वो नहीं है। आपको भी किसी को पढ़ना हो कॉन्टिनेंटल ड्रिप थ्योरी पढ़िएगा साइंस की, और आइसोस्टेसिस ही पढ़िएगा, आप आश्चर्य पर जाएंगे कि पूरी पूरे जितने भी देश आज विदित हैं उन सबको अगर एक क्रम से और सेट किया जाए तो पूरी गोल संरचना बनती है, जम्बूद्वीप जैसा है ठीक वैसा ही कंपेयर। असल में मुश्किल ये है कि जिनको साइंस मालूम है उनको धर्म के मामले में जीरो है, जिनको धर्म मालूम है वे साइंस के मामले में जीरो है, असल में दोनों का कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है, तो अपन लोग जो है दुविधा में पड़ जाते हैं, जो साइंस पढ़ते हुए सोचते धर्म में झूठा लिखा है, जो धर्म पढ़ते हुए कहते आज को विज्ञान ही झूठा, नहीं भाई दोनों के बीच कोई सामंजस्य है, हम अपने ज्ञान से उसको कोशिश करें जानने की। दुर्दुर विष्कम्भा पूर्व पूर्व परिक्षेपनो वल्याकृत्या, और वो जम्बूद्वीप इत्यादि जो द्वीप और समुद्र हैं कैसे हैं, तो कहते हैं वे द्वीप और समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं और अपने से पहले वाले को घेर कर रहने वाले हैं और वलय या चूड़ी की आकृति वाले हैं। गोल जम्बूद्वीप है मेज करें, उसको घेरे हुए लवण समुद्र है, उसको घेरे हुए धात की खंड है, उसको घेरे हुए कालोदवी समुद्र है, उसको घेरे हुए पुष्करवर द्वीप है, इस तरह से नंदीश्वर द्वीप, और अंतिम जो है स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण अंत में समुद्र, ये असंख्यात द्वीप समुद्र पूरे मध्यलोक में फैले हुए हैं, ये हमारे मध्यलोक की संरचना है। द्वीप समुद्र और उनके व्यास और संरचना और उनके आकार पर विचार अगर अपन करें तो वर्तमान में जो निकोलस कॉपरनिकस हुए हैं उनका सिद्धांत रहा कि पृथ्वी रोज अपनी धुरी पर एक बार घूमती है और साल भर में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, ये बहुत पुरानी मान्यता हो गई है, विदेश से हमारे यहाँ आई है, हमारी भारतीय मान्यता भी है, जिसमें कि सबसे अभी नाम ऊपर है CM सुब्रमण्यम का, उनका पूरा रिसर्च पेपर मेरे पास आया है और उसमें उन्होंने सिद्ध किया है कि पृथ्वी नहीं घूमती है। मुझे अगर किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए तो मैं विद्वानों के सामने, खगोल शास्त्रियों के सामने, वो भी बहुत बड़े खगोल शास्त्री हैं, उनने लिखा है कि मैं सिद्ध कर सकता हूं कि पृथ्वी घूमती नहीं है, पश्चिम का जितना भी तारा भौतिक ज्ञान है वो सब पीछे छूट गया है, और इन्होंने, ये मदुरई के खगोल शास्त्री हैं, हमें उस पेपर से भी बहुत सारी चीजें जानने को मिल सकती हैं, कभी जानने की कोशिश करिएगा कि जो संरचना आज हमें विदित नहीं है अगर हम प्रयास करें तो वो सब विज्ञान की कसौटी पर भी सही उतरेगी। फिर ये जो द्वीप समुद्र हैं उनके मध्य में सुमेरु पर्वत है, उसको बताने के लिए एक अलग से सूत्र लिखा है, तन मध्य मेरु नाविर्वृत्तो योजन शत सहस्र विस्कम्भो जम्बूद्वीपा, उन सब द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बू द्वीप है और उस जम्बू द्वीप के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है जो गोल है और 1,00,000 योजन व्यास वाला है। 1,00,000 योजन मतलब लगभग 4 करोड़ मील, अगर अपन इसको कैलकुलेट करें तो 4 करोड़ मील इतने व्यास वाला गोलाकार सुमेरु पर्वत जम्बू द्वीप के ठीक मध्य में है और मध्य लोक के ठीक मध्य में जम्बू द्वीप है। इस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र भरत हेमवत हरिविदेह रम्यक हैरण्यवतै रावत वर्षा क्षेत्राणि। इस जम्बू द्वीप में भरत वर्ष हेमवत वर्ष हरिवर्ष विदेह वर्ष रम्यक वर्ष हैरण्य वर्ष और ऐरावत वर्ष इनको इस तरह से नाम दिए हैं। ये 7 और क्षेत्र हैं इसी जम्बू द्वीप में जिसमें से अपना भरत क्षेत्र दक्षिण की तरफ है और उत्तर में ऐरावत है मध्य में विदेह है और उनके बीच में दो दो क्षेत्र और हैं। इस तरह से ये क्षेत्र हैं। तद विभाजिनः पूर्वापरायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील लुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। इन 7 क्षेत्रों को विभाजित करने वाले इनके बीच 6 पर्वत भी हैं हिम्बान महाहिम्बान निषद नील रुक्मी और शिखरिणी नाम के। ये 6 पर्वत हैं। हिम्बान हिमालय पर्वत है हम कह नहीं सकते क्योंकि हिमालय पर्वत मुश्किल से साइंस की भाषा में 5 करोड़ वर्ष पुराना है, ज्यादा पुराना नहीं है। कभी वहां पर 35C हुआ करता था जहां आज हिमालयन ओरोगमी हुई है। कभी आप पढ़िएगा पूरा का पूरा एक गोंडवाना लैंड था साइंस की भाषा में जो कि हम जम्बू द्वीप कह सकते हैं। फिर वो गोंडवाना 7 महाद्वीप मालूम पड़ते हैं, उन सबको जोड़ दिया जाए। आप आश्चर्यचकित होंगे इस चीज को सुन के, अपन लोग जानने नहीं चाहते इन सब चीजों को, पर कोशिश करिएगा तो आप जान सकते हैं। हमारे बच्चे इन सब चीजों को नहीं जानते हैं और बहुत बड़े बन के घर में चले आते हैं कि हमने जैसे बहुत जान लिया। इनको जानिएगा कभी कि ये क्या क्या चीजें हैं, हमारे धर्म से किस तरह रिलेट होती हैं। तो बड़ा मजा आता है इन चीजों को जान करके कि हाँ गौरव होता है कि हमारे पास जो जानकारी है एकदम सॉलिड है। ये बात अलग है कि हमारे पास भाषा नहीं है, हमारी बहुत ओल्ड भाषा है। हम आज माइस की भाषा तो बोल नहीं पाते, हम योजन बोलते हैं। तो योजन बोलते हैं तो आप कहते हैं ये कौन सी टर्म लाए आप, योजन यूनिट है हमारी। एक योजन जो है हमारा 2 कोष का भी होता है, एक योजन हमारा 2,000 कोष का भी होता है, एक कोष हमारा 2 मील का होता है, माइल में 0.1-0.6 किलोमीटर होते हैं। आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोशिश करना पड़ेगी। तो उनको विभाजित करने वाले जो हिम्बान महाहिम्बान इत्यादि पर्वत हैं वे भी वर्तमान में सब तो दिखाई नहीं पड़ते हैं पर हैं। ये डिवाइडिंग माउंटेन्स कहला सकते हैं। उनकी आभा कैसी है ये तक बता दिया। हेमार्जुन तपनी वैडूर रजत हेमया, और वे जो पर्वत हैं उनकी आभा पहले पर्वत की सोने के समान, दूसरे की चांदी के समान, तीसरे की तपाए हुए सोने के समान, चौथे की बैरल बैजूर मणि जो कि जैसे उसका कंठ होता है नीले रंग का मयूर का वैसे रंग का, और फिर चांदी के रंग का पांचवा, और फिर सोने के रंग का ये छठवां। ऐसी आभा वाले हैं वो पर्वत, ये भी बता दिया। और उन पर्वतों के दोनों पार्श्वों में आचार्य श्री तो से जब अभी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया पर्वत का। बोले कोई जरूरी थोड़ी है कि ऐसे ऐसे ही पर्वत हो, इस तरह से प्लेट्यू और ऐसे करके उन्होंने बनाया और उनके पार्श्व पर मणियां हों, संभव है इस तरह से भी पर्वत हों। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ऐसे ही पर्वत हों, प्लेट्यू हो ऊपर में और फिर उनका उस प्रकार का आकार हो, क्योंकि अपने यहां पर दिया है मणि विचित्र पार्श्व ऊपर ही मूल्य चतुल्य विस्तारा। उन पर्वतों के पार्श्व भाग विचित्र प्रकार की मणियों से भरे हैं और वे ऊपर मध्य और मूल में समान विस्तार वाले हैं। आप आश्चर्य करेंगे कि पर्वत क्या समान विस्तार वाला होता है, क्या ऐसी दीवार है क्या ऊपर खड़ी हुई है कि ऊपर से नीचे तक, नहीं। आप उसकी संरचना को मध्य में ऊपर और नीचे समान बनाएं और शेप उसका पर्वताकार हो सकता है। आपको डायग्राम यहां बना के नहीं बता सकता हूं, डायग्राम बनता है ऐसा भी जिसमें कि ऊपर मध्य में और नीचे एक जैसा डायमीटर आएगा फिर भी शेप माउंटेन का हो, ऐसा अपन बना सकते हैं, बना करके देख लिया है इसलिए लगता है कि हाँ सही है। मध्य में भी ऊपर और नीचे मूल में विस्तार एक सा होने पर भी पर्वत हैं और उनके पार्श्व भाग मणियों से खचित हैं। पद्म महापद्मति गिंच केशरी महाकुंडी कुंडी का हरदास तेषाम उपरि। उन पर्वतों के ऊपर तालाव हैं, उनके नाम भी दिए हैं हर एक पर्वत के ऊपर। पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महाकुंडरीक और पुंडरीक ये क्रमशः छह तालाव हैं, उन तालाव में क्या है? प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विष्कम्भो रदा दस योजनावगाहा तन्मध्य योजनम पुष्करम। उन तालावों की लंबाई चौड़ाई गहराई और उसमें रहने वाले पुष्प के बारे में तक वर्णन किया है। पहला तालाव जो है 1000 योजन लंबा और उससे आधा 500 योजन चौड़ा है। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विष्कम्भो रदा और दस योजनावगाहा गहराई कितनी है? 10 योजन गहरा वो तालाव है और उस तालाव के ठीक मध्य में एक कमल है। वो कमल वनस्पति का एक नहीं है, वो पृथ्वी का एक ही है। तब द्विगुण द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी चा, और पहले वाले में जितना कमल है उससे दूने दूने कमल अगले वाले तालाव में है। और उन कमलों पर कौन रहता है? तन्निवासिन्यो देव्यः श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्लुपम स्थितयः सा सामानिक परिसत्काः। उसमें श्री वी धृति कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी ये देवियां सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ निवास करती हैं और वहां उनकी आयु एक पल्ल की है। 56 कुमारियों का नाम आपने बहुत सुना होगा, उसमें इनकी संख्या भी शामिल है। ये जो श्री वी धृति कीर्ति इत्यादि हैं ऐसा मुझे पढ़ने में आया, और इनके बारे में डिटेल बहुत है पर डिटेल में जाने की मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो उन पद्म से जो सरोवर हैं उन सरोवरों से नदियाँ निकली हैं और नदियाँ हर एक क्षेत्र में बहती हैं। इसका पूरा डायग्राम आप देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। मैं तो आप इमेजिनेशन करते जाइएगा, सपोज करिएगा कि एक गोल है, उस गोल में 7 क्षेत्र हो गए, उनके बीच में 6 पर्वत हो गए, हर एक पर एक एक तालाब है। हर एक तालाब से मजा यह है कि पहले वाले तालाब से इस तरफ से एक नदी निकलती, ऐसे एक नदी निकलती, एक सेंटर निकल करके उस तरफ पीछे चली जाती, 3 निकलती, फिर उसके बाद 2-2 निकलती और एक इस तरफ एक उस तरफ, इस तरह पूरी संरचना है। मैं तो दिमाग में चूंकि चित्र है मेरे इसलिए इमेज कर रहा हूं। आप थोड़ा सा पढ़िएगा इन चीजों को, बहुत शौक से पढ़िएगा, देखिएगा कि क्या क्या लिखा हुआ है और हम अपने ज्ञान का कैसे उपयोग कर सकते हैं। अपने क्षयोपशम का, क्षयोपशम तो मिला है, दुनिया की सब चीजें जानते हैं, लेकिन ये जो लिखा हुआ है उसको जानने के लिए क्षयोपशम नहीं है क्या? है हमारे पास, हमारा बस प्रयत्न नहीं है, असल में प्रयत्न नहीं करते, करिएगा। नदियां कितनी है और कौन कौन कहां कहां बहती हैं ये लिखा है। गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्चा हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तन मध्यगाः। उन भरत आदि क्षेत्रों में गंगा सिंधु रोहित रोहिताश्चा हरित हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकूला और रक्ता रक्तोदा, ये जो है दो दो नदियां निकलती हैं। 7 क्षेत्रों में 14 नदियां बहती हैं। भारतवर्ष में गंगा और सिंधु आज भी नाम है, ये दो नदियां गंगा और सिंधु। हेमवत क्षेत्र में रोहित और रोहिताश्चा, हरिवर्ष में हरित हरिकांता, विदेह में सीता सीतोदा, रम्यक में नारी नरकांता, हैरणवत में स्वर्णकूला रूपकूला, ऐरावत में रक्ता रक्तोदा, ये नदियां बहती हैं। इस तरह ये 14 नदियां हैं। इनकी भी बहुत सारी और नदियां हैं, द्वयो द्वयो पूर्वाह पूर्वगाह। प्रत्येक क्षेत्र में इन दो दो नदियों में से पहली पहली नदी तो पूर्व की तरफ जाती है, दूसरी दूसरी नदी पश्चिम की तरफ जाती है। आज भी गंगा और सिंधु पूर्व और पश्चिम की तरफ जाने वाली नदियां हैं। लगता तो है कि जो कुछ लिखा गया है वो एकदम सही लिखा हुआ है। लगता क्या है, है ही, कम से कम इतना ही लगे ही तो भी ठीक है तो सही वास्तव में, पर हमें इतना ही तो लगना चाहिए कि हाँ लिखा है, लगता है कि लिखा हुआ है। शेषास्त परगाह, शेष नदियां पश्चिम की तरफ, पूर्व पूर्व की तरफ बहने वाली पहली पहली दूसरी दूसरी, गंगा और सिंधु है तो गंगा पूर्व की तरफ सिंधु पश्चिम की तरफ बहने वाली है। चतुर्दश नदी सहस्र परिवताः गंगा सिंधु आद्यो नद्यः, और गंगा और सिंधु नदियों की 14,000 परिवार नदियां हैं, लेकिन आगे आगे सीता सीतोदा तक दूनी दूनी परिवार नदियां हैं और उसके आगे अंत तक परिवार नदियां भी आधी आधी होती चली जाती हैं, 1,00,000 तक जाती हैं, वहां से फिर घटती हैं। भरतौ षड्विंशति पंच योजन शत विस्तारः षट चौकोन विंशति भागाः योजनस्य। अब हम जानना चाहेंगे भरत क्षेत्र के बारे में, जम्बूद्वीप का विस्तार, नदियों का और सब तो जान लिया, क्या भरत क्षेत्र के बारे में कुछ और? तो कहते हैं कि भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 526 योजन या 526 सही 6/19 है। टोटल में से इतना पोर्शन भरत क्षेत्र का है, ये मैंने कैलकुलेशन किया था इस पूरे का, तो लगभग 21,05,200 मील का लगभग एरिया इसका है। मुझे लगता है कि अगर आज वर्तमान में जितने समुद्र हैं अगर उनका भी एरिया इसमें शामिल कर लिया जाए तो बहुत पूरा भारत क्षेत्र का एरिया अपने को मिल जाएगा। जितने महाद्वीप हैं और जितने समुद्र हैं उन सब का भी लैंड, क्योंकि उसके नीचे भी तो जमीन है और साइंस कह रहा है कि यहां कभी समुद्र था नहीं, यहां जमीन थी, धीरे धीरे पानी का रेशियो बड़ा है इसलिए ये सब पानी में कवरअप हो गया है। अगर देखें तो इतना बड़ा भारत क्षेत्र है लगभग 21,05,200 मील डायमीटर का। तब द्विगुण द्विगुण विस्तारा वर्ष दर वर्षा विदेहांता विदेश क्षेत्र पर्यंत पर्वत और क्षेत्र सब दूने दूने विस्तार के हैं। भारत के बाद हेमवत है तो वो और दूना है, विदेश तक ये दूने होते हैं, फिर उसके बाद ऐरावत तक, विदेश से ऐरावत तक, फिर घटते चले जाते हैं। इस तरह विदेश क्षेत्र सबके बीच में एकदम सिरमौर है ये मान के चलिएगा। विदेहांता विदेह बिल्कुल बीच में है और आजू बाजू दोनों तरफ रचना की गई है। उत्तरा दक्षिण तुल्य विदेह क्षेत्र के उत्तर और दक्षिण की संरचना एकदम समान है। भरत भरते लावक वृद्धि राशोक्षर समय अभ्याम उत्सर्पुण्य वसर्पणीभ्याम पूरे के पूरे 7 क्षेत्र जो जम्बू द्वीप के हैं उसमें भरत और ऐरावती ऐसा क्षेत्र है जहाँ की उत्सर्पणी अवसर्पणी आदि 6 कालों की वृद्धि और राश होता है। बाकी सब जगह तो देखिएगा जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें तो भोग भूमियां उत्तम मध्यम और जगन बनी हुई हैं। विदेश क्षेत्र में भी देवकुरु उत्तरकुरु ये तो भोग भूमि है, आगे आएगा, और कर्म भूमि भी है तो वहां 4th काल हमेशा वर्तता रहता है। सिर्फ भरत और ऐरावत क्षेत्र हैं जहां पहले से लेके छठा, छठे से लेके पुनः पहला, उत्सर्पणी अवसर्पणी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इरा। अपन की भाषा में ये कह सकते हैं कि ऐसा समय जिसमें कि मनुष्यों के आयु उत्सेद और ज्ञान इत्यादि क्रमशः घटते चले जाते हैं वो अवसर्पणी काल है, जिसमें क्रमशः बढ़ते चले जाते हैं वो उत्सर्पणी काल है। जैसे ठीक 12 बजे हैं और आप नीचे आए तो 6 बजे तक नीचे आते हैं, फिर 6 से फिर 12 तक चले जाते हैं, ये अवसर्पणी है, फिर ऊपर जाना ये उत्सर्पणी है। ऐसे ही पूरा एक साइकिल जीवन का यहाँ पर चलता है अपने भरत क्षेत्र में और ऐसा ही ऐरावत क्षेत्र में। इसके बारे में बहुत डिटेल है। अगर देखें तो पहला काल सुखमा सुखमा होता है जहाँ पहली भोग भूमि के समान है, जिसका कि समय 4 कोड़ा कोड़ी सागर है, और दूसरा काल आता है मध्यम भोग भूमि का है जिसका कि 3 कोड़ा कोड़ी सागर है, तीसरे काल का 2 कोड़ा कोड़ी सागर है, चौथा काल 1 कोड़ा कोड़ी सागर में से 42,000 वर्ष कम कर दीजिए, पांचवें के 21,000 वर्ष और छठे के 21,000 वर्ष, इस तरह से 6 काल होते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का 1 उत्सर्पणी और 10 का ही 1 अवसर्पणी, इस तरह 20 कोड़ा कोड़ी सागर का 1 कल्प काल होता है, 1 उत्सर्पणी 1 अवसर्पणी। ऐसी असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीत जाने पर एक हुंडाव सर्पणी आती है, जिस हुंडाव सर्पणी में हम अपने पाप का फल भोगने के लिए बैठे हुए हैं। यह भी हमें विचार करना चाहिए। असंख्यात उत्सर्पणी अवसर्पणी बीचने पर हुंडाव सर्पणी, जिसमें जो कुछ भी ना हो वो सब थोड़ा है, जितना भी उल्टा सुलटा होता है अधिकांश इसी में होता है। आप बहुत सारी बातें हैं हुंडाव सर्पणी के बारे में, कभी भी चक्रवर्ती हारते नहीं है, चक्रवर्ती हार गए, तीर्थंकर तीसरे काल में ही पैदा हुए, तीसरे में ही मोक्ष चले गए, तीर्थंकर के भी बेटी पैदा हुई, और भी बहुत सारी चीजें इस काल में हैं, रुद्र की उत्पत्ति होना, नारद की उत्पत्ति होना, ये सब, और विभिन्न 363 मतों की उत्पत्ति होना, ये सब इसी हुंडाव सर्पणी की वजह से है, वरना ये तीर्थ बहुत आसानी से हमारा पूरा का पूरा चलता। अगर हम सामान्य अवसर्पणी में बैठे होते तो शायद इतना कष्ट नहीं होता, ये हुंडाव सर्पणी है। हमें जानना चाहिए कि किस तरह से काल परिवर्तन होता है और उस काल परिवर्तन के दौरान भी हमें अपने जीवन को संभालना चाहिए। ताभ्याम परा भूमि अवस्थिता, भरत और ऐरावत के अलावा शेष भूमियां अवस्थित हैं जहां जो व्यवस्था है वो शाश्वत है। कैसी है? तो उत्सर्पणी का 4th और अवसर्पणी का 3rd काल हेमवत क्षेत्र में हमेशा बना रहता है, और हरिवर्ष में उत्सर्पणी का 5वां और अवसर्पणी का 2rd काल हमेशा बना रहता है, देवगुरु में तो उत्सर्पणी का 6th काल या अवसर्पणी का 1st काल हमेशा बना रहता है। इनकी आयु और उससे माने उत्तम मध्यम जगन भोग भूमियां यहां हमेशा रहती हैं, ये अवस्थित हैं। भरत रैरावत के अलावा शेष भूमिया और एकद द्वित्री पल्लोक स्थितियों हेमवत का हरिवर्षक दैव कुरु कहा हेमवत हरिवर्ष और देव कुरु इनमें प्राणियों की स्थिति क्रम से एक पल्लोपम दो पल्लोपम और तीन पल्लोपम। मनुष्य की अधिकतम आयु कितनी होती है? तीन पल्ल की होती है और कम से कम आयु अंतर मुहूर्त की होती है, ये भी जो है अपन को इसी से डिसाइड हो जाता है। तथोतरा उत्तर के क्षेत्रों के प्राणी दक्षिण के क्षेत्रों के समान है। विदेश क्षेत्र के उत्तर दक्षिण की तरफ अपन है, उत्तर की तरफ ऐरावत है, दोनों में समानता है। जैसे हमने हेमवत हरिवर्ष और देवकुरु को बताया उसी प्रकार से रम्यक हेरंडवत और उत्तर कुरु के बारे में भी जानना चाहिए। विदेहेशु संख्या काला, थोड़ी सी जानकारी विदेह क्षेत्र की भी ले लेनी चाहिए। विदेहों में संख्यात वर्ष की आयु वाले जीव हुआ करते हैं, संख्यात वर्ष की जिसमें कि अधिकतम जो है एक पूर्व कोटि की आयु होती है। मैंने एक पूर्व कोटि को वर्षों में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। देखिएगा, प्रयास करने में कोई बुरा नहीं है। मान लीजिए एक पूर्व कोटि तो है ही, थोड़ा सा गुणा भाग करिए तो लगभग आता है 70,56,000 करोड़ वर्ष की आयु। एक पूर्व कोटि 84 लाख में 84 लाख का गुणा करिएगा तब एक पूर्वांग आता है, उसमें 84 लाख का गुणा करिएगा तब जाकर के एक पूर्व आता है, उसमें भी फिर एक करोड़ का गुणा करिए तब एक करोड़ पूर्व आता है। पूरा कैलकुलेशन निकालने पर 70,56,000 करोड़ वर्ष की आयु मैक्सिमम मनुष्य की विदेश क्षेत्र में हुआ करती है। जब अपने यहां भी चौथा काल आता है तब इतनी ही आयु अपने यहां पर भी भरत और ऐरावत क्षेत्र में होती है। भरतस्य विष्कम्भो जम्बू दीपश 90% भागा, वो जो हमने 526 सही 6/19 बताया था वो तो एक कैलकुलेशन है ही। दूसरे ढंग से और भरत क्षेत्र के बारे में कहना चाहें तो पूरे जम्बूद्वीप का 190वां भाग करें तो वो हमारा भरत क्षेत्र। कितना छोटा सा है जम्बूद्वीप का 190वां भाग, वो भरत क्षेत्र है। इसके बाद भी पूरा भरत क्षेत्र हमारी अप्रोच में नहीं है। सोचिएगा द्विर्धातकी खंडे, धातकी खंड जो द्वीप है वो और पर्वत आदि सब जम्बूद्वीप से दूने दूने होते चले जाते हैं। पुष्करार्धेचा और पुष्कर बड़ द्वीप भी उतना ही है दुगना। धातकी खंड के समान पुष्करार्ध में भी मेरु वर्ष वर्षधर नदी और सरोवर की संख्या समान है। आधा लिया है पुष्करार्धे, पूरा पुष्कर लेते तो दुगना होता, लेकिन आधा लिया है। इसलिए आधा लिया है क्योंकि प्राग मानुषोत्तरान मनुष्य, जो उसके बीच में मानुषोत्तर पर्वत पड़ा है पुष्कर वरद्वीप के, वो पुष्कर वरद्वीप को तो आधा करता ही है और वो आधा और दो द्वीप मिलाकर के पूरा ढाई द्वीप, यही मनुष्य लोक कहलाता है। मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के पहले पहले ही मिलते हैं, उसके बाद मनुष्य नहीं है। ये बात बताने के लिए ये दोनों सूत्र आए हैं। इस तरह से ढाई द्वीप में अगर देखें तो 5 मेरु हैं और 35 वर्ष हैं, 30 वर्षधर हैं, 70 महानदियां और 30 सरोवर हैं। ये अपना पूरा का पूरा ढाई द्वीप के बारे में भी अपन जानना चाहें तो इतना शॉर्ट में एक एक सूत्र में जान सकते हैं। मनुष्य लोक तो ढाई द्वीप के बराबर ही है और मनुष्य लोक में कौन कौन रहते हैं? आर्य मलेच्छ शास्त्र, आर्य और मलेच्छ दोनों प्रकार के मनुष्य होते हैं। जो स्वयं गुण वाले हैं और गुणवानों की संगति में रहते हैं वे आर्य कहलाते हैं और जो शेष बचे वो सब मलेच्छ हैं। जिनको धर्म नहीं आता है सिर्फ वे खाना पीना और कमा लेना। मैं तो सोचता हूं जो जिस व्यक्ति धर्म से शून्य है, जो सिर्फ खाने पीने इंटरटेन करने को जीवन मानता है, उसे मैं क्या कहूं। आचार्य भगवंत तो जो कह रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा है, पर है शायद वही। मैं फिर भी नहीं कह रहा हूं, पर आचार्य महाराज जो कह रहे हैं वो अच्छा नहीं लगेगा कि हम अगर धर्म से शून्य हैं तो हमारा नंबर किस में आने वाला है। अरे आर्य खंड में पैदा होकर के भी आर्यों के समान हमारा व्यवहार होना चाहिए। हमारे जीवन में गुण और गुण कौन से हैं? कहते सम्यक दर्शन और व्रत नियम इत्यादि ही श्रेष्ठ गुण माने जाते हैं। हमें सम्यक दर्शन और व्रत नियम संयम इत्यादि गुण प्राप्त करके अपने आर्यपने को बनाए रखना चाहिए। क्षेत्रारी जात्यारी चारित्रारी कर्मारी और दर्शनारी, ऐसे आर्य भी 5 प्रकार के होते हैं। आज तो जो है रिद्धि प्राप्त आर्य तो मिलते ही नहीं है, जो रिद्धि से रहित आ रही हैं, वे भी क्षेत्र की दृष्टि से आ रही हैं, क्योंकि भरत क्षेत्र में पैदा हुए इसलिए आ रही हैं। देखा जाए तो जाति की अपेक्षा से आ रही कह लीजिएगा, चारित्र की अपेक्षा से आ रही होना बहुत दुर्लभ है, कर्मों से आ रही होना और दुर्लभ है, और सम्यक दर्शन से आ रही होना वो तो और अधिक दुर्लभ है। इसलिए ये आरीपना भी अपने जीवन में जब आरी भूमि में अपन पैदा हुए हैं तो प्राप्त करना चाहिए। म्लेच्छ के बारे में क्या करिएगा जान करके, फिर भी जान लीजिएगा दो प्रकार के हैं, कर्म भूमि में रहने वाले म्लेच्छ भी हैं और अंतर्दीपज म्लेच्छ भी हैं। लवण समुद्र और कालोदधी जो समुद्र है उनके मध्य में स्थित जो अंतर्दीप हैं, आइसलैंड्स जिसको कहते हैं, उनमें निवास करने वाले कर्म भूमि के कुभोग भूमि वाले जो अंतर्दीपज म्लेच्छ हैं वे वैसा ही जीवन जीते हैं। सब म्लेच्छ खंडों में एकमात्र मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। म्लेच्छ खंड से आरी खंड में आए हुए जो कर्म भूमि के म्लेच्छ हैं और उनकी कन्याएं हैं जिनका चक्रवर्ती से विवाह होता है, वे प्रवर्जित होकर के दीक्षा भी ले सकते हैं, इतनी क्षमता उनके भीतर भी होती है। पर म्लेच्छ खंड में कौन उत्पन्न होता है ये भी थोड़ा सा जान लीजिएगा ताकि आगे थोड़ा सा बचने का उपाय हो सके। मिथ्यात्व से रत में लीन और त्यागी व्रतियों की निंदा करने वाले और भ्रष्ट आचरण वाले जीव मर करके मनुष्य तो होते हैं लेकिन कुभोग भूमि और अंतर्दीपज में होते हैं। अब जरा सा अपने मन में, ठीक है मिथ्यात्व रहा आता है उसकी चिंता अपन नहीं करते हैं ज्यादा, लेकिन आज जितनी ज्यादा त्यागी व्रति की निंदा करने का एक फैशन चल पड़ा है वो हमें कहां ले जाएगा। मुझे कई बार ये बात याद आ जाती है कि सचमुच त्यागी व्रति के बारे में जितना गंदा सोच आज का हो गया है, पता नहीं उस तरह का सोच हमें कहां ले जाएगा। वो भले ही कैसे ही हो, वो नरक जाते हो जाएं, वो अपनी जाने त्यागी व्रति चाहे जैसा आचरण करते हो, लेकिन त्यागी व्रति के बारे में अपना मन गंदा करने वाले हम कहां जाएंगे, ये तो इसमें तय हो रहा है, इसको भी हमें जानना चाहिए। म्लेच्छ खंड शायद ऐसे ही लोगों के लिए सुरक्षित है जहां की लोग स्वयं व्रत नियम तो नहीं लेते, कोई अगर व्रत नियम लेता है और थोड़ा बहुत उसमें शिथिलता भी आती है तब उसकी जो निंदा करता है वो अधिक ज्यादा दोषी है। मैं तो सोचता हूं बुराई करने वाला तो बुरा है ही, और बुरा करने वाला तो बुरा है ही, लेकिन बुराई करने वाला उससे भी ज्यादा बुरा है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए इन चीजों को पढ़ते वक्त। भरत ही रावत विदेहा कर्म भूमि अन्यत्र देव गुरु उत्तर गुरुभ्या, विदेह क्षेत्र में देव गुरु और उत्तर गुरु के सिवाय भरत ऐरावत और विदेह इन तीनों में कर्म भूमि है। विदेह क्षेत्र में तो देव गुरु उत्तर गुरु और भरत और ऐरावत ये क्षेत्र, अगर कर्म भूमि के बारे में कोई पूछे तो कर्म भूमि कहां है, भरत क्षेत्र में है, ऐरावत में है। विदेह क्षेत्र में देव गुरु उत्तर गुरु को छोड़ करके शेष जो है वो सब कर्म भूमि है, और वहां मजा ये है विदेह क्षेत्र में कि चौथा काल हमेशा बढ़ता है, तीर्थंकर का समोचरण वहां हमेशा लगा रहता है, 20 तीर्थंकर के समोचरण तो हमेशा रहेंगे। वहां पर पांच विदेह हैं पूरे ढाई द्वीप में, ऐसे ही पांच भरत हैं, पांच ऐरावत हैं, इन सब में 15 कर्म भूमियां हैं, और वैसे देखा जाए तो 170 कर्म भूमियां हैं, क्योंकि एक एक विदेह क्षेत्र में 32 कर्म भूमियां हैं, और 32 के बीच में डिवाइडेशन किया है 8-8 का, तो 8 के बीच में एक, 8-8 के बीच में एक, तो 32 के बीच में चार तीर्थंकर, ऐसे 160 के बीच में 20 तीर्थंकर जरूर से रहते, 19 नहीं हो सकते, 21 हो सकते, 22 हो सकते, 23 हो सकते, 25 हो सकते, 50 हो सकते, 160 हो सकते मैक्सिमम। अजितनाथ भगवान का काल ऐसा था जिस समय की पूरे भरत पूरे ऐरावत और पूरे विदेश क्षेत्र में 170 तीर्थंकर एक साथ विचरण करते थे, क्या अद्भुत उस समय रहा होगा। अपन अभी विदेश क्षेत्र के बारे में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, अच्छी बात है, इसलिए इंटरेस्ट लेना चाहिए क्योंकि विदेह जहां से देह में रह करके भी देहातीत होने की योग्यता प्राप्त है वो विदेह क्षेत्र है, या कि जहां जन्म मरण से परे अनंत भगवान हमेशा विचरण करते हैं वो विदेह क्षेत्र है। ऐसे विदेह क्षेत्र में भी कर्म भूमियां हैं, 15 कर्म भूमि है, 30 अकर्म भूमियां हैं, इस तरह ये वर्णन हुआ। मेरे ख्याल से अपने समय से एक दो सूत्र और बचे हैं। ऋस्थिति परावरे त्रिपल्लोकमान्तर मुहूर्ते तिर्यज्ञो निचानामचा, मन आखिरी में करता है कि जान लें कि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी है और जघन्य कितनी है, तो आचार्य भगवंत कृपा करके कहते हैं कि मनुष्य की उत्कृष्ट आयु तीन पल की है जो उत्तम भोग भूमि में होती है और जगन्नायु अंतर्मुहूर्त है, लब्धि पर्याप्तक जीव भी हैं, मनुष्य की हैसियत से पैदा होते हैं लेकिन अंतर्मुहूर्त में ही अपना जीवन पूरा करके उस भाव को गंवा देते हैं और फिर पता नहीं कहां जाकर के उत्पन्न होंगे। जगन्नायु भी मनुष्य की इतनी थोड़ी सी अंतर्मुहूर्त के लिए उत्पन्न हुए हुए और समाप्त, वो अंतर्मुहूर्त भी इतना बड़ा अंतर्मुहूर्त नहीं है, 48 मिनट या 47 मिनट का, बहुत छोटा सा, मुश्किल से 2 मिनट में वो पूरी की पूरी उनकी जीवन की लीला मनुष्य होकर के, संगी पंचेंद्री होकर के भी समाप्त हो जाते हैं। आयु जान करके हमें इस बात का विचार करना चाहिए कि हमको अगर जीवन मिला है 60 साल का तो बहुत मिला है। ये जीवन इतना थोड़ा नहीं है कि हम कुछ ना कर सकें, लेकिन ये जीवन इतना बड़ा भी नहीं है कि हम सब कुछ कर सकें। इसलिए जितना बने हमें उतना तो इस अपने जीवन में कर ही लेना चाहिए। तिरंचियों की आयु भी, तिरियज्ञों ने जाना आमचा, तिरियज्ञों की आयु भी उतनी ही है। तिरंचियों के भाव स्थिति और काय स्थिति की अपेक्षा से मैंने थोड़ा सा इसमें लिखा है, उससे अच्छा रहेगा अपन जान लें। अगर भाव स्थिति और काय स्थिति अलग अलग है, दोनों की भाव स्थिति देखा जाए तो पृथ्वी का एक 22,000 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, जल का एक जीव की आयु 7,000 वर्ष की है, अग्नि का एक की 3 दिन रात की है। ये कितना मजेदार है, 3 दिन रात की मैक्सिमम अग्नि काय की आयु होती है, इसलिए किसी को दाह संस्कार करते हैं तो 3 दिन में अपने आप अग्नि काय नष्ट हो जाएंगे, 3रे दिन खारी उठाने जाते हैं, बुझाते नहीं है, अपने आप 3 दिन में अपनी आयु पूरी करके अग्नि काय जीव समाप्त हो जाएंगे, हमको मारने का पाप भी नहीं लगेगा। देखिएगा 3 दिन की आयु है कुल। वायु कायक जीवों की 3,000 वर्ष की है, वनस्पति कायक की 10,000 वर्ष की, 2 इंद्री की मैक्सिमम 12 वर्ष, 3 इंद्री की 49 दिन रात की आयु है, 4 इंद्री की 6 महीने की, पंचेंद्री की तो जलचर की पूर्व कोटि होती है, सरीसर्प की 9 पूर्वांग की है, सर्प की 42,000 वर्ष की आयु है, पक्षियों की 72,000 वर्ष की आयु और 4 पैर वालों की 3 पल आयु, ये तो तिरंचियों में है ही। और काय स्थिति की अपेक्षा से देखा जाए तो पृथ्वी जल अग्नि वायु का एक जीवों के असंख्यात लोगों के समय प्रमाण काय स्थिति है, इतने समय तक इनका शरीर रह सकता है, वनस्पति की अनंत काल पर्यंत है, विकलेंद्री संख्यात 1,000 वर्ष तक अपनी शरीर को बनाए रख सकते हैं, पंचेंद्री पूर्व कोटि प्रत्यक्ष से लेकर के 3 पल सभी की जघन अंतर्मुहूर्त है। आखिरी में इस अध्याय के मैं हमेशा ये कहा करता हूँ, वो फिर से कह देता हूँ, अभी इंसानों को मानू से जमी होना है, महरो महताब के ऐवान नहीं है जरूरी, अभी आदमी को ठीक से जमीन पर रहना सीखना है, अभी आकाश में उड़ने के दिन आए नहीं हैं। अभी तो अगर हम ठीक से इस लोक की संरचना समझ करके और जमीन पर ही ठीक से चलना सीख जाएं तो एक दिन ऐसा भी आएगा, वैसे हमारा स्वभाव तो इन सब की ग्रिप से बाहर होकर के और सूरज चांद से भी ऊपर और उस सिद्ध शिला में विराजमान होने का है। पूरे लोक की संरचना समझने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि भगवान हमको सद्बुद्धि दे, इस लोक की सीमाओं को लांघ करके हम अलोक और लोक के दोनों के मध्य जो सिद्ध शिला है वहां जान करके बैठें। कल 4थे अध्याय में ऊर्ध्व लोक के बारे में समझेंगे और सिद्ध शिला के बारे में भी विशेष जानकारी। 2 ही समझे अपन ने, अधोलोक और मध्य लोक। हम भावना पाते हैं कि हम इन सब की संरचना समझ के अपने जीवन का कल्याण करें, इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज।